her. If you perform this kind of activity, this is the result which you get. She will be burnt alive in very hot oil. Here you can see there is a very big pot where the oil is burning, and in this hot oil she has to, and she will not die. This is very important. She will suffer, she will shout, she will cry, but she will not die. This is hell. See another example. This person is very happy. If you go to a liquor bar, don't go. I'm not recommending. I'm just saying, if you go, then you'll find like this. And a person is very happy to serve. He is thinking, I'm doing very nice job. So person who drinks and who serves, what happens to them? There is a punishment awaiting. You see this picture? These are agents of Yama. And they are giving the punishment. What is the punishment? Because you are in a habit of drinking, they are giving you molten metal, hot molten metal to drink. And you won't die. You will have to suffer. This is a unique feature of hell. You suffer a lot, go on suffering, but you don't die. Just imagine, you are getting a lot of pain. People are pulling out your body. Somebody is pulling your all skin out of your body, but you won't die. How much suffering it will be. Just for the taste of our tongue, we are ready to take all these kinds of sufferings. Suppose someone is involved with illicit sexual affairs, which generally happens because our senses are very powerful and they pull us to perform these activities. So if someone is performing these activities thinking that this is enjoyment, this is life, let me enjoy, who has seen and nobody is watching me, I will not get any punishment. No sir, this is the punishment for you. You can see here, you will be forced to embrace a molten metal form of the woman, very hot, red hot, which you can't even touch. You will have to embrace her and then you won't die. You will only suffer. This is hell. Can you see here? There are so many animals whom we have killed. They are pulling out the organs of the body. The person is suffering, but he won't die. This is hell. This is the punishment we get for performing all kinds of sinful activities. So we should be very careful. And if you perform sinful activities, you go down to the lower species like the snake or other lower species, and then you have to suffer. So this is karma and vikarma. Some examples of akarma: performing the worship of Supreme Personality of Godhead, performing some service, performing some kirtan. This is all comes in a karma, because we are not doing for ourselves, we are doing for the pleasure of God. And our founder Acharya Srila Prabhupada, he wanted people to know this activity, and he took this activity to all over the world. In 12 years he had 108 temples all over the world and thousands of disciples who could perform this akarma and perfect their life. As of now, we have around 500 centers all over the world which are offering you this opportunity to come and perform some service, any kind of service which you can do as per your liking, just for the pleasure of the Lord, so that you also can perfect your life as thousands and thousands and thousands of people are doing all over the world. So that is why. Now let's try to understand the difference, or I would like to summarize the karma, vikarma and akarma. What is karma? Is it a material activity or spiritual? It is material. Karma is material, that is pious activity is material. Vikarma is material, but akarma is spiritual. By performing karma you will get punya, by performing vikarma you will get pap, that is sin, and by performing akarma you will go beyond sin and piety. So these material activities are prescribed in the shastras, but they are cause of bondage. But Vikarma are the prohibited acts. Akarma are the acts which are performed for the behalf of God. And what are the actions? I gave you some example: charity to the poor, digging wells, planting trees. All these are examples of karma by which you get some wealth, some beauty, some good birth, health, happiness, etc. But this binds you to the cycle of birth and death, and in your next birth you may get a good family or you may go to the higher planets. Whereas in vikarma, the examples are cheating, hurting, stealing, all these things, because of which you may get poverty, you may get diseases, ugliness, suffering, all these things, and in your next life you will get punishment in the hell and you will go down in the lower species. But the akarma, which is performed for the pleasure of the Lord, like chanting the holy name, like worshipping Him, like trying to glorify Him, these all result in devotion to the God. We develop an attachment to the God and detachment from the worldly affairs. And then what is the result? We are elevated to the spiritual world. This is the result of akarma. Now after this, there are many other things, many other questions, like there are instant and delayed karma. Why don't we get all the result in this life? Why we have to wait for another life? Then what is destiny? What is fate? All these questions we will answer tomorrow, along with the most important question, that why do we have to suffer although we are very good? Why do good people get bad things, and why do bad things happen to good people? So thank you very much for paying attention. We will stop here, and then now if you have any of your questions, we will take some question, and then we will have kirtan and prasadam for everyone. Yes, so you are on the lights behind also. So if you have any question, there is mic here. You can raise your hand, you will get mic. Or if you want a slip, you can take a slip. So those who were awake can ask the question, because I was not able to see all of you. And I hope that all of you were awake. So any questions, or should we perform kirtan? Somebody is writing, I think, some question. If you want, you can take a slip and you can write the question also. You can ask for the slip. So tomorrow we will have full 1 hour. But if you don't have any question, what will we do in 1 hour? So kindly go through the notes. You will have a lot of questions. Write down those questions, and then you can ask those questions. Because we are keeping, we'll try, because we have not been able to finish, so we will try to keep 1 hour. But whatever time is available, kindly write down your questions. So tomorrow you can ask all these questions. Somebody is writing behind, can you get that question? So we are running out of time, kindly write it fast. So we will take only these 3 questions. I have got 3 questions. Do not write more. If you have, tomorrow we will answer. First question is, what is the procedure to join ISKCON? Thank you very much for this question. Well, we don't have very strict rules as such. If you wish to join ISKCON, first you can start coming, as you are coming for these sessions. And slowly, slowly, you try to read books, try to understand what we are preaching. Because unless you are convinced of the philosophy of the teachings of ISKCON, you will not be joining ISKCON. and it is not fruitful also. Suppose you go to some institution, it says just sit for 15 minutes in meditation and you will become God. And you say, oh wow, in 15 minutes I can become God, why to go to ISKCON? I'll go and become God in 15 minutes. Then they are cheating. So we don't want to cheat you. So please come regularly, try to understand the philosophy. If you like the philosophy and if you are convinced what we are saying, and I'm sure you will be convinced because we are saying what is mentioned in the scriptures. So when you are convinced, then you try to follow those rules and regulations, and then you are a member of ISKCON. Slowly, slowly, you will understand that ISKCON is not just an organization where you become a member, pay some fees, and then you will get a card and you will be always a member, go there every 15 days or every month and then just take prasad and come back. No. ISKCON will become a way of life for you if you sincerely follow what is being preached. So if you really want to join ISKCON, I invite you that please come regularly for the program. Also, apart from this, keep coming to temple, meet us separately, individually, ask your questions, ask your doubts, take some knowledge, and then slowly, slowly come into ISKCON. But anyway, I would like to welcome you to ISKCON. If a person do some work, it may be beneficial for someone and it may be a loss for someone. So how it is related to karma and vikarma? Well, yes, if you perform some activity, definitely one will gain and another will lose. Because there is a saying that if you are gaining one-sided, definitely someone will have to lose. If you are gaining 100 rupees, someone has lost 100 rupees. That is why you are gaining. That's true. How it is related to karma and vikarma is that a person who is gaining something, some material benefit, as I explained, he has performed some pious activities. He has performed some nice karma, and that is the reason he is gaining. And the person who is losing, he has performed some vikarma, and that is the reason he is losing. Suppose someone loses his money. Some thieves come and steal your money, or you have lost your money in share market or wherever. That is your vikarma, result of your vikarma. You have lost your opulence. But as I said, opulences are results of piety. So if you perform good karma, you will always gain. But apart from these, as I explained, whether you get good karma or bad karma, both will bind you in this material world. You will have to come, you will have to stay here for enjoying. But if you perform akarma, which is an activity for the pleasure of the Lord, you will never have to come back here. You will always enjoy. You will go to the eternal world. Right? So kindly, do not get entangled in this karma and vikarma. Try to perform akarma. Tomorrow we will elaborate on this subject. When did the reaction of karma begin? Is any karma performed? Is new karma or reaction of previous karma? Very good question. First is, you are asking, when did the reaction of karma begin? Since the time we came into this material world, the cycle of karma begins. And when did we come to this material world? From time immemorial. How can we know? Thousands and thousands and crores and millions of lifetime back. When did we come? How can we remember? The most important question for us at this stage is not when did we come or when did this action of karma started. Most important for us is how to go out of it. Like suppose somebody has pushed you in a well where you don't know swimming. You are in a well, you are drowning. If you say, instead of trying to save yourself, if you are going to find out who pushed you, then what will happen? What is more important at this stage, whether to find out who pushed you or to try to come out of the well? To try to come out of the well. Yeah. So this question that when did it start is not important for us at this stage. First, try to come out of it. and then try to find who pushed me. Second, you have asked that is any karma performed is new or reaction of previous karma. Well, all our karmas which we are performing are the reaction of previous karma. We have done something, that is why we are performing. But at the same time, new karmas are also added. We are going on performing, new reactions are being added. Say suppose, to fulfill one reaction, you are performing an action. It's a new action. You have not performed earlier, now you are performing. But because of this action, there is a new reaction waiting for you. So in this way, we go on creating karma, we go on creating action, reaction, action and reaction. And then there is a cycle. And in a circle, you can't point out where is the beginning. This is a new one or an old one or a new one and an old one. It's a cycle going on. Go on performing reaction, go on performing action, go on getting reaction, action, reaction, action, reaction. And finally, as I was explaining, miss the whole thing. Go on running after Miss World, Miss Universe, Miss whatever Asia or Miss Pacific and miss everything. Right? So don't do that. Don't try to miss your life. It is a very important life which we have got. And in this important life, we have an opportunity to learn about ourselves. So don't try to miss the life. Otherwise you will lament at the end of your life that life slipped out of your hand. Don't let it slip out of your hand. Hold the life tightly. Live as you should. Don't just become a slave of your senses. So thank you very much. If you have any other questions, later you can meet me, or tomorrow we have kept question answer session. Kindly ask at that time. Thank you. Now we will perform kirtan, and after that you will have prasad. Okay? Thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Where is it? Okay, there are 2 minutes before this mridanga come. We can take one question. Was there? There are 2 questions. If we have already committed some vikarma, is there any remedy? Very nice question. Because we may have already performed some sinful activities. Now what to do? What is the remedy for this? Well, if you are sick, definitely if you take medicine, still you have to suffer for some time, but there is a time where you will be all right. Right? Suppose you have fever, 104 degrees. Then you go to a doctor, take some medicine. After 1 or 2 days, you will be all right. But these 1 or 2 days, you will have to suffer. Similarly, we have committed some sinful activities. We are suffering now. But if we take the right medicine, then a time will come when we will be all right. Then all these activities will go. Scriptures explain about this. Scripture says that by performing a karma, where we will mention the activities like chanting the holy name or worshipping him, by performing a karma, you can wipe out all the reactions of your previous activities. Pure devotional service burns down all the reaction. It may be like heaps, it may be like mountains, but it can destroy all your reaction. That is the only way, no other way. Good activities will not cancel bad activities. Don't think if you have done some bad activities, now I will perform some good activities so that they will be neutralized. We will discuss this tomorrow. Very important point. People think I have done some wrong activities, I have earned money through some wrong means. So let me do some donation. Let me give some donation. Let me perform some charitable activity so that my all wrong things which I am doing, I am earning money through smuggling or killing or all these things, then I will become a saint. No. The only way to counteract this is the devotional service to the Supreme Lord. There's one more question. Soul will leave the body and will go to heaven or hell. And where is the question of punishing the body in hell, right? Or pushing, what is it? Punishing? I think punishing, yeah. So he's saying soul will leave the body and will go to heaven or hell. Where is the question of punishing the body in hell? I didn't get this question. When you are saying that soul will go to hell, that means it will get punishment. Question one is asking that it will leave the body and will go to heaven or hell. Your question may be, if it goes to heaven, then there is no question of punishment. Yes, if it goes to heaven, there will be no punishment, but you will have to come down again and then again perform. Like in this life, you have learnt ABCD, then you have learnt all these theorems, then you came to engineering or medical or whatever. You have learnt, you will get a degree, and once you die and you will be born again as a small child, what will you have to do? Can you say that in my last life I was an engineer, so please don't teach me ABCD, I know everything? You won't be born with your own certificate. Again you will have to do is, Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, three bag full. Right? Again that twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Bas, same thing you'll have to do. ABCD again. So similarly, if you perform some pious activities, you will have to come back again. But in hell, what is hell is, actually it's a training center. Suppose as per your activities, you are bound to go in a particular body, like dog's body. So in a dog body, the soul has to be trained, because if the soul is sent directly, now we are not habitual to eat directly from the mouth. So if you are sent directly to the dog's body, dog will try to eat from his hand, which is not possible, but we are habitual. So in hell, you are trained, you are beaten and put in the dog's body till you start thinking that yes, I am a dog, I am a dog, I am a dog, and then you are sent in a dog's body. So hell is a training center for all of us if you want to go down. So that is why the punishment is there in the hell, right? We may discuss this tomorrow, because now we will perform Kirtan. So thank you very much. Please come tomorrow. Today also many students were not here on the time, and that's the reason we could not finish this class also. Tomorrow is the last day, it's Sunday, so I think you can come early. Can you come at 6 o'clock tomorrow? All of you? If you'll say yes loudly, then I can hear. So we will start at 6 o'clock tomorrow, Sunday being Sunday. Please come on time. This is a very important now phase where we are entering. We'll know now what is destiny, what is fate, why am I suffering. All this we will know tomorrow. So please come on time so that we can finish this off. Thank you very much. Hare Krishna.
तत्वों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार इस सृष्टि में 24 तत्व मिलकर एक काल क्षेत्र बनाते हैं, इसकी चर्चा पिछले मंगलवार को शुरू की थी। और ये 24 तत्व इस आप लोग आगे आ जाइए। 24 तत्व मिलकर प्रकृति बनाते हैं, कार्य क्षेत्र बनाते हैं। इस अध्याय में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और जो भी प्रकृति क्या है, अर्जुन ने प्रश्न किया था पहले श्लोक में। हम लोग देखते हैं कि अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और भगवान इस अध्याय में उनका वर्णन करते हैं। दूसरे ही श्लोक से वो उत्तर देना आरंभ करते हैं और भगवान बताते हैं कि ये जो शरीर, इदम शरीरम कौन्तेय, ये जो शरीर आप देख रहे हो, ये क्या है? ये क्षेत्र है, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। भगवान के ऐसे माइक की जरूरत है, भगवान ने बिना माइक के नहीं बोलते। लेकिन हम लोगों की बंदोबस्त है इसलिए माइक की आवश्यकता पड़ती है। तो इन 24 तत्वों में आप लोगों ने 11 चीजों पर वर्णन किया, तो 11 चीजों का वर्णन सुना था पिछले बार, कौन कौन सी थी वो 11 चीजें, कौन थी पिछले बार? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 15 हो गए। 24 तत्व जिनका वर्णन भगवान कर रहे हैं कौन कौन से हैं वो? पहले है पंच महाभूत। पंच महाभूत मतलब कौन कौन से? पृथ्वी, भूमि, रापो, लोक, वायु, हम, बस 5 है वो। इसे पंच महाभूत कहते हैं। भगवान वर्णन करते महाभूत अहंकार, फिर 6 है अहंकार, और 7 है बुद्धि, 8 पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त, अव्यक्त मतलब 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त, और उसके बाद महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त एवच, इंद्रियाणि दशैकं च, 11 इंद्रियां। 11 कौन सी इंद्रियां? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, और 11वीं इंद्री कौन सी? दशैकं मतलब 10 और 1, 11 मन, तो मन को 11वीं इंद्रिय कहा जाता है। इंद्रियाणि दशैकं च, और कितने हो गए? पांच महाभूत बुद्धि और अहंकार, 7 अव्यक्त, 8 और 10 इंद्रियां, 18 और 1 मन, 19, कितने बच गए आप लोगों के? 5 बचा। तो 5 कौन से रह गए? पंचम चेन्द्रिय गोचर अर्थात 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं मतलब इंद्रिय विषय, आंखों के लिए देखना रूप, और जीभा के लिए स्वाद, त्वचा के लिए स्पर्श, नाक के लिए गंध, ये इंद्रिय विषय। तो 5 इंद्रिय विषय, ये सारे मिलकर 24 तत्व, इसका वर्णन भगवान ने भगवद गीता में किया है। अगर आप इस श्लोक को याद कर लेंगे तो कभी भी कहीं भी कोई आपसे पूछेगा कि आपका शरीर कितने तत्वों से बना है, 20 है, 22 है, 26 है, 25 है, तो आप आराम से बता सकोगे कि नहीं 24 है। और महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च, पंचम चेन्द्रिय गोचरः। ये श्लोक याद कर लेंगे तो फिर पूरे 24 तत्व आराम से बता सकते, तो इसको याद कीजिएगा। तो ये 24 तत्व मिलकर हमारा शरीर या कार्य क्षेत्र बनाते हैं। अब ये 24 तत्व आते कैसे हैं, किसको पता है 24 तत्व कैसे आते हैं? पहले कौन सा आता है? जब ये भौतिक जगत बनता है तो पहले क्या आता? अंडा पहले आता है कि मुर्गी पहले आता है? 24 तत्वों में से सबसे पहले कौन सा आता है? पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी नहीं होगी तो 24 तत्व खड़े कहां पर होंगे? आकाश। आकाश आएगा तो फिर कहां रहेगा वो? मन, अहंकार, ऐसे 24 तत्व एक एक करते बोलते जाइए तो कुछ तो होगा। इस सृष्टि की जब रचना होती है तो हम सब जानते हैं कि भगवान अपना विस्तार सबसे पहले बलदेव जी के रूप में करते हैं, फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह आता है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव। फिर इन 4 चतुर्व्यूह से और एक नारायण आते हैं, फिर उन नारायण से और एक चतुर्व्यूह आता है, जिस चतुर्व्यूह के संकर्षण से महाविष्णु प्रकट होते हैं। आप लोग सोइएगा मत, क्योंकि ये विषय ऐसा है इसलिए बोलना पड़ रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझना तो चाहिए कि हम लोग आए कैसे, कैसे भौतिक सृष्टि प्रकट हुई है, नहीं तो आपको कोई कहेगा कि एक बम फटा, एक बैन, और वो बम फटने से अचानक सुंदर सुंदर बिल्डिंग आ गए, सुंदर पेड़ आ गए, पर्वत आ गए, नदी आ गई,
इतने सुंदर सुंदर फूल हैं भगवान की प्रकृति में, आप अगर उन फूलों को देखेंगे तो वो रंग आप बना भी नहीं सकते, इतनी अच्छी पेंटिंग उन्होंने की है भगवान ने। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं साइंटिस्ट, कि एक बम फटा, बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंग, और उस धमाके से सब कुछ आ गया, सुंदर सुंदर चीजें आ गई। अभी हम लोग यहाँ पर एक बहुत अच्छा सुंदर भगवान के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं, ऐसी इच्छा। तो साइंटिस्ट के हिसाब से हमें यहाँ पर एक बम लगाना चाहिए, और जोर से बम फटेगा, बिग बैंग होगा, और उस बैंग के द्वारा यहाँ पर सुंदर सा मंदिर प्रकट हो जाएगा। आप लोगों को ट्राई मत कीजिएगा, हम लोग कहा रहेंगे, आप लोगों ने अगर इसको आके उड़ा दिया है तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, लेकिन शास्त्र बतलाता है कि सृष्टि कैसे आई। तो सृष्टि में, भौतिक सृष्टि में महाविष्णु का विस्तार हुआ। महाविष्णु भौतिक सृष्टि की शुरुआत करते हैं, फिर महाविष्णु के आने के बाद ये प्रथम पुरुष अवतार कहलाते हैं। तीन पुरुष अवतार होते हैं, ये प्रथम पुरुष अवतार है। छह प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं, अलग अलग पुरुष अवतार होते हैं, गुण अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, मन्वंतर अवतार होते हैं, ये पुरुष अवतार है। तो पुरुष अवतार उनमें पहले है दूसरे कौन से हैं, कारण जब से विष्णु कहां है, पहले महाविष्णु है, दूसरे कारण जब से विष्णु है, महाविष्णु के बाद, महाविष्णु के बाद गरुड़ दर्शाए विष्णु, और उनके बाद शिव दर्शाए विष्णु। कारण दर्शाए विष्णु, महाविष्णु को भी कारण दर्शाई विष्णु कहते हैं, जो कारण दक्षाई कारण सागर में शयन करते हैं। तो महाविष्णु पहले पुरुष अवतार हैं, फिर इनसे महत तत्व आता है। महत तत्व, ये जो सारी भौतिक प्रकृति है, जो अव्यक्त अवस्था में होती है, प्रकट नहीं होती है, उसको महत तत्व कहते हैं। तो तब महत तत्व की उत्पत्ति होती है। अब इस महत्व में कुछ हलचल चाहिए, कुछ होना चाहिए, अभी तक तो नहीं हुआ है, अव्यक्त है। हम आपको बता रहे हैं सृष्टि कैसे बनती है, ध्यान से सुनिएगा, बाहर जाकर बता दीजिए, नहीं तो लोग आपको केवल बम फोड़ के बनाएंगे सृष्टि। तो महत्व के बाद काल प्रकट होता है, समय, और समय जब प्रकट हो जाता है उसके बाद मिथ्या अहंकार आता है। हम लोग जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो हम लोगों को बार बार समझाया जाता है कि आप बाकी सारी चीजों से दूर जा सकते हैं, लेकिन अहंकार बड़ी मुश्किल से जाता है, खास करके मिथ्या अहंकार कि हम ये शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, ये अहंकार है, मिथ्या अहंकार। तो क्यों कठिनाई से जाता है, इसका कारण ये है कि ये सबसे पहले आता है। इस सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले, अभी तक कुछ नहीं आए, हमारी इंद्रियां नहीं आई हैं, 24 तत्वों में कुछ नहीं आया, सबसे पहला क्या आया है, अहंकार। महाभूत नहीं आए हैं, पंच महाभूत भी नहीं आए, अभी अहंकार आया। और ये अहंकार आने से ये सृष्टि में आवरण पड़ जाता है। अहंकार का मतलब क्या है, मिथ्या अहंकार का अर्थ है सच सत्य को न देखना, ये मिथ्या अहंकार। हम आत्मा हैं ये हम भी जानते हैं, लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण हम सोचते हैं हम शरीर, इसलिए मिथ्या अहंकार ये एक आवरण डाल देता है इस जगत में, और फिर उसके द्वारा प्रकृति के गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति के गुण जब तक नहीं प्रकट होंगे, प्रकृति कार्य नहीं करती, क्योंकि तो प्रकृति कैसे कार्य करती है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुण प्रकट होते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे पंच महाभूत आते हैं, और पंच महाभूत एक साथ नहीं आ जाते हैं कि पांचों चीजें एक साथ प्रकट हो गए। सबसे पहले आकाश आता है, पृथ्वी नहीं आती, सबसे पहले आकाश आता है। और ये आकाश कैसे बदलता है, ये अहंकार और प्रकृति का मिला जुला रूप है, जो अहंकार आकाश में बदल जाता है। और फिर आकाश का गुण क्या है? अब ये जानते हैं आकाश का क्या गुण है, पांच चीजें हैं, हर एक पांचों का एक एक गुण है, विशेष गुण। आकाश का क्या गुण? ध्वनि, सांप। तो जब आकाश प्रकट होता है तो ध्वनि प्रकट होती है, और आकाश और ध्वनि के मिलने से दूसरा तत्व आता है। कौन सा है वो? आकाश के बाद क्या आता है? वायु, वायु आते हैं। और वायु का क्या गुण है? जैसे आकाश में ध्वनि है, वायु में क्या है? हवा, वायु में हवा है। वायु का गुण है स्पर्श, वायु को स्पर्श कर सकते हैं ना। हेलो मिस्टर वायु, कैसे हैं आप मिला सकते हैं कि नहीं? वायु जब आती है तो स्पर्श करके जाती है, हवा तेज चलती है तो हम लोगों को पता चलता है, तो स्पर्श ये वायु का गुण। लेकिन वायु में ध्वनि भी रहती है। ये पांचों चीजें जब प्रकट हो रही हैं एक एक करके, तो पहले के गुण उनमें रहते हैं। आकाश में केवल ध्वनि है, जब वायु आती है तो वायु में ध्वनि भी होता है और स्पर्श भी होता है। फिर जब ये वायु स्पर्श के संपर्क में आता है, मिलता है, तो फिर प्रकट होता है तीसरा तत्व अग्नि। अग्नि प्रकट होती है। अभी वायु में ध्वनि थी, आवाज थी, आकाश में वायु में ध्वनि और स्पर्श। अब अग्नि में क्या है? अग्नि का क्या गुण है? उष्णता, गर्मी। पांच तन्मात्राओं के बारे में बात करें, अग्नि में रूप है। पांच तन्मात्राएं हैं, रूप, गंध, स्पर्श और कौन से हैं? शब्द यानी ध्वनि और रस। तो अभी अग्नि प्रकट हुई, अग्नि में तीन गुण हो जाते हैं, पहले के दो और अग्नि का गुण। पहले के दो गुण हैं शब्द या ध्वनि, स्पर्श और रूप। ये तीनों गुण अग्नि में होते हैं। फिर जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या प्रकट होता है? जल। अग्नि के बाद जल प्रकट होता है। जल में चार गुण होते हैं, शब्द होता है, स्पर्श होता है, रूप होता है और रस या स्वाद। जल में स्वाद होता है ना, अग्नि में स्वाद होता है? आप लोग कभी टेस्ट करके देखिएगा कि अग्नि में स्वाद है या नहीं, या वायु में स्वाद है कि नहीं। ऐसे मुंह खोल कर खड़े हो जाइएगा, स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हवा जा रही है, अंदर स्वाद है या नहीं। तो ध्वनि में स्वाद नहीं है, रस नहीं है, वायु में भी नहीं है, अग्नि में भी नहीं। ये रस आता है जल में। और फिर इसके बाद पांचवा तत्व प्रकट होता है और वो है पृथ्वी। और पृथ्वी का विशेषता क्या है? गंध, सुगंध। आपको जो अच्छी अच्छी फूलों में सुगंध आती है, कैसे आती है? पृथ्वी से आती। तो पृथ्वी में पांचों चीजें हैं। कौन सी है पांच चीजें? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पांच चीजें पृथ्वी में होती है। इस तरह से पृथ्वी, इस तरह से पांच महाभूत प्रकट हो जाते हैं। तो ये कितने चीजें प्रकट हो गए 24 में से? भूल गए, 11 प्रकट हो गए, पांच महाभूत प्रकट हुए, पांच तन्मात्राएं प्रकट हुई और अहंकार प्रकट हुआ, और तीन गुण भी तो प्रकट हो गए। कितने हो गए? 12। 12 चीजें प्रकट हुई ना। अहंकार सबसे पहले आया, तीन गुण आए, दो हो गए, और फिर 10, पांच महाभूत और पांच तन्मात्राएं। तो 12 चीजें अभी तक प्रकट हो गए। फिर इसके बाद जो गुण है प्रकृति के, उनसे अलग अलग चीजें आती हैं। जैसे जो रजोगुण है, कौन कौन से गुण है आप लोग जानते हैं? तीन गुण कौन कौन से? तो सत्व गुण से मन आता है, हमारा मन की उत्पत्ति सत्व गुण से होती है। और साथ साथ सत्वगुण से दसों दिशाओं के अधिष्ठाता देव आते हैं और हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवता राज्य करते हैं। लेकिन हमारे शरीर पर हमारा भी राज्य नहीं है, हमें सोचते हैं हमारा शरीर है, लेकिन हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर अलग अलग स्थानों पर दस देवता राज्य करते हैं। तो वो सत्वगुण से आते हैं। रजोगुण से हमारी इंद्रियां आती हैं। कितनी इंद्रियां हैं? दस इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। तो ये दस इंद्रियां रजोगुण से आती हैं। तो अभी कितने तक तो हो गए, काम कर रहे हैं आप लोग? नहीं, पहले कितने? बारह हुए थे, फिर मन आया, तेरह, और फिर दस इंद्रिया आ गए, तेईस हो गए ना। आप लोग मैथ्स में बात बोल, तो चौबीसवा तत्व कौन सा रह गया? कौन सा रह गया चौबीसवा तत्व? आप लोग सब सो तो नहीं रहे ना? हरि बोल हरे कृष्ण। चौबीसवा कौन सा तत्व रह गया? बुद्धि। बुद्धि कैसे आती है? बुद्धि भी रजोगुण से आती है, रजोगुण से उत्पन्न होती है। रजोगुण से दो चीजें उत्पन्न होती हैं, पहले हमारी इंद्रियां और फिर बुद्धि। तो ये सारे 24 तत्व इस तरह इस प्रकृति में आते हैं। हमें इनको जानना चाहिए, क्योंकि मूल कारण को जानना बड़ा आवश्यक होता है। जब तक हम लोग किसी चीज के मूल कारण को नहीं जानते हैं, उस चीज को ठीक से समझ नहीं पाते, फिर उसको गलत मानते हैं। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं बड़ा सा बैंग, बिग बैंग हुआ और फिर यूनिवर्स आ गया, गलत धारणाएं हो जाती। महाभारत में कथा आती है राजा शांतनु की, उनको भी मूल कारण नहीं मालूम होने के कारण उन्होंने अपनी ही पत्नी पर बहुत क्रोध किया, जिसके कारण उसको खो बैठे। राजा शांतनु तो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, और एक समय जब जंगल में विहार कर रहे थे तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री का उनको सामना हुआ, और वो स्त्री एकदम ऐसे लग रही थी जैसे देवलोक से उतर कर आई। शांतनु महाराज बहुत आकर्षित हो गए, फिर उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। उस स्त्री ने कहा कि मैं विवाह आपसे करूंगी, लेकिन एक शर्त, आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछना। वैसे आजकल भी ऐसा ही होता है, आजकल की भौतिक जगत में ऐसा बेचारा पति कुछ पूछ भी नहीं पाता है। वैसे भी पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, पहले उनको शपथ लेनी पड़ती थी, अभी बिना शपथ लिए ही ऐसी स्थिति हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे कुछ नहीं पूछना, अगर आप पूछेंगे या मुझे बुरा भला कहेंगे या मेरे ऊपर चिल्लाएंगे गुस्सा करेंगे तो मैं चली जाऊंगी। विवाह के पहले धमकी दे दी। शांतनु ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपसे आपके ऊपर कभी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आपको कभी कुछ नहीं पूछूंगा, आपके जो अन्याय वो करना, पूरी स्वतंत्रता है। तो इस तरह से उनका विवाह हो गया, और विवाह के बाद संतानें हुई। पहला पुत्र हुआ, पत्नी ने उठाया गंगा में फेंक दिया। दूसरा पुत्र हुआ, पत्नी ने उठाया गंगा में फेंक दिया। तीसरा पुत्र हुआ, पत्नी ने उठाया गंगा में फेंक दिया। बड़े परेशान हो रहे हैं, लेकिन शपथ है, उनको वचन दिया था कि अगर आप मुझसे कुछ भी पूछोगे तो मैं चली जाऊंगी। वैसे करते करते एक दो तीन चार पांच छह सात, सात बच्चों को गंगा में डाल दिया। बड़े परेशान थे शांतनु महाराज। फिर आठवां पुत्र हुआ, अब उसकी पत्नी ने उठाया और जा ही रही थी कि अब शांतनु महाराज से रहा नहीं जाता। शांतनु महाराज ने बड़े जोर से उनको कहा कि तुम कैसी माता अपने ही पुत्रों की हत्या कर रही हो, ये क्या कारण है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा कर रही है? तो उसने उस समय बताया कि मैं गंगा हूं, और ये जो आठ लड़के हैं ये वसु थे अपने पूर्व जन्म में, और ये आठों वसुओं ने एक अपराध किया था। तो उन्होंने बताया कि मेरु पर्वत पर बहुत सुंदर आश्रम है वशिष्ठ मुनि का, और वशिष्ठ मुनि वहां पर अपनी गाय के साथ रहते हैं। उनके पास एक कामधेनु गाय है, तो इस कामधेनु गाय के साथ और गाय और एक छोटा सा बच्चा है, ऋषि वहां रहते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं। एक समय ये आठ वसु बड़े शक्तिशाली थे, अपनी पत्नियों के साथ वहां भ्रमण कर रहे थे उस स्थान पर। उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं था आश्रम में, तो ये वसुदेव थे गाय को लेकर चले गए। जब वशिष्ठ मुनि वापस आए तो उन्होंने देखा गाय नहीं है, बड़े क्रोधित हो गए और अपनी योग शक्ति से उनको पता चला कि कौन गाय ले गया है। तो उस समय वशिष्ठ मुनि ने एक श्राप दिया, उन्होंने कहा कि आठों लोगों को मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा क्योंकि इन्होंने शूद्रों की तरह कार्य किया। तो उस समय जब इन वसुओं को इसका पता चला तो सब आए वशिष्ठ मुनि के पास, उनसे माफी मांगने लगे, कहने लगे कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि क्योंकि वैष्णव हैं, भक्त हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने जो श्राप दिया है उसको वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा है कि अगर तुम लोग जितने भी समय रहोगे पृथ्वी पर बस उतने ही समय ये श्राप है, अर्थात अगर जन्म लेते ही मृत्यु हो गई तुम्हारा श्राप खत्म। तो वो भागे भागे गए गंगा के पास और उन्होंने कहा कि कृपया करके हमारे ऊपर एक आप ऐसा हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि जैसे ही हमारा जन्म हो आप हमें मार डालिए, ये तो कृपा है, क्योंकि वो चाहते थे जल्दी से वापस जाना। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने कहा कि एक वसु जिसने गाय चुराई है उसको ज्यादा समय तक रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं ये वरदान देता हूं कि वो रहेगा लेकिन वो स्त्री का संग नहीं कर पाए, क्योंकि यहां पर स्त्री संग के कारण उसने ऐसा अपराध किया, इसलिए मैं उसको ये श्राप देता हूं कि पृथ्वी पर रहेगा, काफी लंबे समय तक रहेगा लेकिन स्त्री संग नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बड़ा शक्तिशाली होगा, सारे मनुष्यों में एक सिंह के समान होगा और ऐसा इसका बड़ा गुणगान होगा। तो ऐसा जब हुआ तो गंगा ने स्वीकार किया और फिर गंगा ने शांतनु से विवाह किया और सात वसुओं का उद्धार कर दिया, सात वसु चले गए और ये आठवां वसु था देवव्रत के नाम से बाद में जाना गया, विष्णु पितामह जो बने तो वो वहां रह गए। ये उनका इतिहास था। शांतनु महाराज को पता नहीं था जिस कारण से बड़ा दुख उन्हें होता था जब वो हर बालक को गंगा में बहा देती थी, लेकिन गंगा देवी को बड़ा हर्ष होता क्योंकि वो अपने वचन को पूरा कर रही थी, उनका उद्धार कर रही थी, उनके श्राप को कम कर रही थी। इसलिए हमें हर चीज के कारण तक जाना चाहिए, जब तक हम चीज के कारण को नहीं जानते हैं तब तक हम केवल मानसिक कल्पना के द्वारा उसको जानने का प्रयास करते हैं और जिसके कारण हम लोग सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए सही कारण पर जाना, उसके असली कारण को ढूंढना ये बहुत आवश्यक है और जब तक हम लोग इसको नहीं ढूंढे तब तक हमारी इच्छाएं, हमारा द्वेष, जैसा कि श्लोक में बता रहे हैं, ये सब बना रहता है। अभी 24 तत्व आए हैं, ये 24 तत्व करते क्या, इसमें आत्मा तो नहीं है। तो जब आत्मा इन 24 तत्वों में आ जाती है तो आत्मा एक बंदी बन जाती है और ये एक बंदी ये इस कारागृह में रहते हुए अपने आप को कारागृह मानने लगता है, शरीर मानने लगता है और फिर कष्ट भोगता है। और इसीलिए बताया गया है इच्छा द्वेष ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, सुख दुख। ये इच्छाएं क्या है, हम लोग ये जो अगर समझ जाएं कि ये केवल 24 तत्व हैं। अभी आप लोगों ने सुना कैसे कैसे तत्व आते हैं, सुन के बड़ा आनंद आया होगा आप लोग, आया क्या है या सुनने में पता भी नहीं चल रहा होगा क्या बोल रहे हैं, कौन सा तत्व आ रहा है, इससे ये आ रहा है, इससे वो आ रहा है। लेकिन अगर यही समझ ले कि यही हमारा शरीर है, ये पांच चीजें हैं, ये 5-10 इंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, बस इनमें ही हम लोग फंसे हुए, सारा जीवन केवल इन्हीं में फंसे रहते हैं, है कि नहीं, केवल यही 24 तत्व घुमाते रहते हैं। इसीलिए भगवान ने बताया है कि मैंने इतना बढ़िया यंत्र बनाया है आप सबके लिए और उसको मैं अपनी माया शक्ति के द्वारा घुमाता रहता हूं, यंत्र रूढ़ानी माया, भगवान अपनी माया शक्ति से हम लोगों को घुमाते रहते हैं और हम जीवन भर घूमते रहते हैं। इच्छा द्वेष समुद्रेण द्वंद मोहेन इसी द्वंद में पड़े रहते हैं इच्छा और द्वेष इच्छाएं करते हैं कभी ठीक इच्छा कभी गलत इच्छा लेकिन इच्छाएं हमारी होती रहती हैं कभी भी हम इच्छाओं से दूर नहीं जा पाते कभी कभी हम ऐसी चीजों की इच्छा करते हैं जो हमारे लिए अवांछित जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है लेकिन हो जाती बाद में हमें पता चलता है कुंती महारानी ने भी ऐसी इच्छा की थी हम सब जानते हैं कि विवाह के पहले कुंती महारानी को एक आशीर्वाद एक वरदान मिला था दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था कि आप जिस भी देवता को बुलाना चाहेंगे आप बुलाइए और फिर इस मंत्र के द्वारा जब वो देवता आएंगे तो आपको एक पुत्र उत्पन्न होगा तो कुंती की इच्छा हुई कि इसको टेस्ट करना चाहिए देखना चाहिए सत्य है कि नहीं दुर्वासा मुनि ऐसे तो नहीं हवा में बोलकर चले गए तो इसलिए उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव प्रकट हो गए कुंती महारानी कहने लगी कि अरे मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया मुझे कोई पुत्र पुत्र नहीं चाहिए मेरी तो कोई विवाह भी नहीं हुआ है मैं तो केवल टेस्ट कर रही थी ठीक है कि नहीं परीक्षा ले रही सूर्यदेव ने कहा लेकिन अगर इस मंत्र के द्वारा मुझे बुलाया गया है तो मैं तो पुत्र देकर ही जाऊंगा तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए तो बड़ी दुविधा में पड़ गई कुंती महारानी सोचने लगी कि विवाह नहीं हुआ है पुत्र को लेकर कहां जाएं तो फिर उस समय उन्होंने प्रार्थना की सूर्यदेव से तो सूर्यदेव ने देखिए विज्ञान कितना बढ़ा हमारा आगे बढ़ा हुआ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कुंती महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वो पुत्र उनके कान से प्रकट हुआ इसीलिए उसका नाम था कान से पुत्र प्रकट किया कर सकते कोई साइंटिस्ट अभी हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर पर हमें नियंत्रण है अगर हमारे शरीर पर नियंत्रण है तो कान से खाना खाकर दिखाना चाहिए तो दिखा सकता है कान से खाना खा रहे हैं तो कान से पुत्र प्रकट हुआ इसलिए कर्ण कहा गया वो कुंती ने ऐसे इच्छा कर दी इच्छा और द्वेष हम लोग जानते कितना द्वेष इस महाभारत के युद्ध में हुआ केवल द्वेष ही द्वेष था इसलिए इसका नाम ही ग्रंथ का महाभारत रखा केवल युद्ध हुआ दुर्योधन ने द्वेष किया गांधारी ने द्वेष किया युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज तो द्वेष से परे थे सब होने के पर भी उन्होंने किसी से द्वेष नहीं किया अजात शत्रु धृतराष्ट्र ने द्वेष किया सब लोगों ने केवल इस द्वेष के कारण इतना बड़ा उत्पात मचा इतना बड़ा युद्ध हुआ इस तरह से अपने जीवन में हम लोगों को देखना चाहिए कि जब हम लोग ये सुनते हैं ये 24 तत्व आए हम आत्मा है हम शरीर नहीं है तो हम लोगों को लगता है ये सब क्या कहां की बात है लेकिन अगर इसी चीज को हम अच्छी तरह समझ लें तो कभी हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे क्यों कष्ट नहीं आएंगे हम अपने आप को इन 24 तत्वों में कहीं पर ढूंढते हैं हर कोई व्यक्ति इन्हीं 24 तत्वों में तो ढूंढते हैं प्रकृति के दोहों में अपने आप को ढूंढते हैं कि हम यहीं होंगे हम यहीं कहीं भोग कर लेंगे प्रकृति में रहकर आनंद ले लेंगे इन इंद्रियों में फंसे रहते हैं आंखें क्या चाहती हैं आंखों की वितम मात्रा जो विषय है इंद्रिय विषय रूप सुंदर रूप को देखना चाहते हैं कान सुनना चाहते बहुत एक चीज बड़ा आनंद आता है अभी यहां पर कृष्ण कथा हो रही है भगवद गीता से बोला जा रहा है किसी तरह बैठे हैं जबरदस्ती अभी नीचे जाएंगे और अगर सुनने लगे अगर उसके घर में ऐसा हो गया उसकी लड़की वहां भाग गई इसके लिए हो गया तो एकदम कान खड़े हो जाते हैं कोई नींद नहीं आती है तभी कोई ऐसा नहीं लगता कि अरे 8:05 हो गया अभी क्यों अभी तक बोल रहा है तुरंत सुनते क्या हो गया अरे क्या हो गया कैसे भाग गए क्या हुआ पहले से कुछ था अभी था क्या है सारा हिस्ट्री निकल जाती है उसकी जो हुआ नहीं हुआ सब पता चल जाता है लेकिन अगर किसी को कहें कि अभी एक आधा घंटा और बैठकर कृष्ण कथा सुनते हैं अरे नहीं समय नहीं है जाना है लेट बहुत हो जाएगा बस नहीं मिलती है क्यों क्योंकि आदत है कानों को सुनने इसी तरह हर एक इंद्रिय को आदत है कुछ ना कुछ खाने की भोग करने की तो इंद्रियों के लिए भोग है कानों के लिए भोग है सुनना आंखों के लिए देखना भोग है
नाक के लिए अच्छा सुगंध लेना भोग है। आप एक ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ बहुत सारा कचरा है, बदबू आ रही है बड़ी तेज, तो आप ज्यादातर खड़े नहीं रहेंगे क्योंकि नाक को आदत नहीं, नाक को अच्छा अच्छा चाहिए सुगंध, अच्छा कुछ वो पाव भाजी मंचूरियन कर रहा हो रहा है तो अच्छा वहां पर खड़े रहने में आनंद आता है स्वाद लेने। जैसे एक बार एक बेचारा एक गांव का व्यक्ति शहर में आया और वहां पर उसको बड़ी भूख लगी थी, पैसे ज्यादा नहीं थे, तो उसने देखा कि वहाँ हलवाई की दुकान थी, तो उसमें वो बहुत सारे पकवान थे, बहुत सारे स्वीट्स, जैसे गोविंद स्टॉल में स्वीट रखे रहते हैं कांच से दिखाई देते हैं, तो वैसे ही वो कांच से, और वहां पर वो बना भी रहा था गरम गरम कचौड़ी और समोसा वगैरह, तो उसकी बड़ी सुगंध आ रही थी। 5 मिनट खड़ा हो गया, उसने कहा पैसे नहीं है कम से कम सुगंध ही ले लेते हैं, सुगंध ले रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको और देख रहा था। तो फिर 5 मिनट खड़े रहने के बाद फिर जाने लगा, तो जैसे ही जाने लगा दुकानदार ने बोला इधर आओ इधर आओ। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा अरे पैसे तो देकर जाओ। उसने कहा पैसे कैसे? उसने कहा इतनी देर खड़े होकर तुमने सुगंध ली है तो उसके पैसे तो चाहिए ना, खाया नहीं तो क्या हो गया, सुगंध तो लिया। बेचारा बड़ा परेशान हो गया, कैसे करेंगे पैसे तो है नहीं, तकलीफ में आ गया। तो फिर एक वहां पर बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने क्या कहा, उसने थोड़े से पॉइंट्स दिए, उसको कहा और कान में कुछ बताया। तो ये व्यक्ति गया उसके पास और फिर वहां पर होटल में जाकर वो दुकान में जाकर जोर से जो सिक्के थे उसको खनखनाने लगा, आवाज करने लगा, और आवाज करा और फिर जाने लगा। उसने कहा अरे ये क्या है? तो उसने कहा जैसे मैं केवल सुगंध से संतुष्ट हो गया था, आप आवाज से संतुष्ट हो जाइए, तो आपके मैंने पैसे दे दिए हैं आपको। इसी तरह नाक हमेशा अच्छा अच्छा चीज सुनना चाहती है। तो इस सारी इंद्रियों में हम बंद कर रह जाते हैं, जीवन भर हम लोग यही करते हैं, आंखों को अच्छा अच्छा दिखाना, त्वचा को अच्छा अच्छा जगह पर सुलाना, और नाक को अच्छा सुगंध देना, और कानों को बड़ा अच्छा अच्छा संगीत सुनाना, बस जीवन निकल जाता है। लेकिन जीवन का उद्देश्य ये नहीं, जीवन का उद्देश्य है इन 24 तत्वों के परे जाना। आगे के श्लोकों में श्री प्रभुपाद बड़ा सुंदर वर्णन करेंगे, भगवान वर्णन करने वाले हैं ऐसे 20 गुणों का जो ज्ञान के लक्षण, और भगवान घोषणा करते हैं कि इन 20 के अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान। अगर कितने महत्वपूर्ण श्लोक हैं आगे के जो भी आने वाले हैं, इसमें भगवान वर्णन करेंगे ज्ञान का, वर्णन करने वाले जन्म मृत्यु व्याधि दुख दोषान दर्शन, तो ज्ञान क्या है उसका वर्णन करेंगे, वो तो हम लोग अगली बार ही लेंगे। लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण है कि एक एक पर चर्चा करनी चाहिए। एक जैसे अमानित्व, दूसरों को मान देना, अपने लिए मान स्वीकार न करना, विनम्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, ये ज्ञान के लक्षण। जो ज्ञानी पुरुष है वही विनम्र हो सकता है, जो अज्ञानी है वो अहंकारी रहता है। तो अहंकार ये अज्ञान का लक्षण है। तो ऐसे कई लक्षणों का वर्णन भगवान करने वाले हैं। तो हमें हमारे जीवन में सोचना चाहिए कि इस क्षेत्र का उपयोग कैसे करें। हमें पता चल गया है भगवद गीता के द्वारा कि 24 तत्वों का एक क्षेत्र बन गया है, इस क्षेत्र का उपयोग क्या करना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, जीवन भर क्या करना है, केवल बच्चों को बड़ा करना, उनकी शादी करा देना, उनके बच्चों को देखकर बड़ा आनंद लेना, क्या यही जीवन है या इसके परे कुछ और। हमारे साधारण जीवन में यही होता, चाहे हम कितना ही सुन लें यहां पर आकर, लेकिन बाहर यही होना कि हमारे परिवार, हमारे बच्चे जब तक सेटल नहीं हुए तब तक कुछ हो नहीं सकता, व्यक्ति भक्ति कर नहीं सकता। जब तक बच्चे सेटल होते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, फिर बाल सफेद हो गए तो भी कोई बात नहीं क्योंकि अभी तक बच्चों के बच्चे नहीं हुए हैं। वो नारद मुनि की कथा है ना, कैलाश और नारद मुनि की, बार बार नारद मुनि कहते हैं कि चलिए चलिए, लेकिन कैलाश कहते हैं अभी अभी थोड़ा सा और समय बाकी है, अभी मेरे अंदर थोड़ी सी शक्ति है, करते करते मर जाता है, वहीं पर जन्म लेता है फिर से, फिर भी उसको नहीं छोड़ता। यही हमारी आसक्ति। दरअसल हम देखें तो हम लोग ये कार्य करते करते मर जाते हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते, वहीं लगे रहते हैं, यही मेरा परिवार, हम होंगे काम यहाँ एक दिन। एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये परिवार वाले मेरा बड़ा आदर सम्मान करेंगे, मुझे कहेंगे कि मैंने उनके लिए सब कुछ किया है, बस वही मेरे लिए संतुष्ट है, मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, मूर्खता। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इस क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए, और इस क्षेत्र का शरीर का सबसे अच्छा उपयोग है इसको भगवान की सेवा में लगाना। जब तक हम लोग इससे भगवान की सेवा नहीं करते हैं, ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, भागवतम भगवद्गीता नहीं पढ़ते हैं, तब तक हम लोग केवल अज्ञान में रहते हैं। भगवद्गीता ये इतनी शक्तिशाली है कि इसका केवल एक श्लोक शास्त्रों में बताया गया है, भगवद्गीता के महात्म्य में बताया जाता है कि अगर मृत्यु के समय कोई व्यक्ति भगवद्गीता का स्मरण करता है, भगवद्गीता के श्लोकों का, कितने श्लोक है भगवद्गीता में? 700 श्लोक है। तो उसमें बताया गया है कि भगवद्गीता का पूरा, भगवद्गीता का कोई स्मरण करता है अगर मृत्यु के समय 700 श्लोकों का, 700 श्लोक अगर नहीं कर पाए तो केवल वो श्लोक जो भगवान ने बोले। कितने श्लोक बोले भगवान ने? 700 श्लोकों में से 574 श्लोक भगवान ने बोले। 574 अर्जुन ने कितने बोले हैं? अर्जुन ने 82 श्लोक बोले, 84। और संजय ने कितने बोले हैं? संजय ने बोले है ना बहुत सारे श्लोक, हम लोग कई बार सुनते हैं संजय वाच, संजय ने 41 श्लोक बोले, 41 श्लोक। और एक व्यक्ति ने एक श्लोक बोले, सबसे पहला श्लोक शुरुआत उसी ने की। तो महात्म्य में बताया गया है कि अगर कोई पूरी भगवद्गीता स्मरण करता है, पूरी नहीं कर पाए आधी भगवद्गीता स्मरण करता है, आधी नहीं कर पाए एक अध्याय उसका स्मरण करता है, एक अध्याय स्मरण नहीं कर पाए, अगर एक श्लोक भी भगवद्गीता का स्मरण करता है तो जीवन मृत्यु के समय अगर उसका स्मरण करता है तो वो कभी भी फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेगा। ये गीता का महात्म्य, इसलिए हम लोग इतने श्लोकों का पाठ करते हैं कि गलती से शायद एक श्लोक याद आ जाए, जीवन भर करेंगे तब तो याद आएगा ना। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, फिल्म के भी गाने गुनगुनाने से अच्छा सुबह सुबह एक पेपर पर श्लोक लिखना चाहिए, तो सुबह जब उठे तो उठते ही पहले उसको पढ़ना चाहिए, फिर दिन भर उसको गुनगुनाना चाहिए। जैसे लोग गुनगुनाते हैं ना कोई गाना सुना पिक्चर में तो बचपन से गुनगुनाने लगते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, याद हो जाता है फिर वो गाना, पूरा गाना याद हो जाता है। तो इसी तरह श्लोकों को याद करना चाहिए और फिर सुबह याद कीजिए और दिन भर उसको गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, शाम तक परफेक्ट पक्का हो जाएगा वो श्लोक, फिर अगले दिन दूसरा श्लोक ले लीजिए, तो ऐसे आदत पड़ जाएगी। फिर इन्हीं दिनों में एक दिन तो मृत्यु आनी है ना, तो ऐसे ही एक दिन जब सुबह आपको श्लोक उठाएंगे और पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है भगवान का मैसेज आ जाए, हो गया बहुत हो गया, ज्यादा रह गई अभी, चलो अभी जाना है। तब फिर उस समय अचानक क्योंकि आदत पड़ी है गाने की, कभी भी कहीं भी जाए, लोग आप कहते हैं कि आप कहीं भी हो, बस में हो, पैदल जा रहे हो, तो आप कहीं भी जाए, सड़क पे हो, नहा रहे हो, ज्यादातर लोग नहाने के समय बहुत गाना गा रहे हैं, तो भारत में पता नहीं कैसी पाश्चात्य देशों में, लेकिन भारत में तो बड़ी प्रथा है, उनको बाथरूम सिंगर्स कहते हैं, कहीं और नहीं गाएंगे लेकिन नहाते समय जरूर गाते हैं। तो नहा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप केवल उस श्लोक को बनाइए, तो फिर किसी ना किसी समय तो मृत्यु आएगी, खाते समय आ सकती है, चलते समय आ सकती है, बस में आ सकती है, प्लेन में आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो हर जगह अगर हम इन श्लोकों को पढ़ते रहेंगे तो गीता महात्म्य के अनुसार हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए इन श्लोकों को हमें पाठ करना चाहिए। तो इस क्षेत्र को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, और अगर हम लोग पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करेंगे तो इतने सारे उदाहरण हम लोगों के सामने हैं कि जो बताते हैं कि भगवान स्वयं आपके पास आएंगे। चल एक बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर लीला हुई थी तिरुपति में बालाजी की। बालाजी आप सब जानते हैं और दयालु हैं, सबको दर्शन देते हैं, लाखों लोग दर्शन उनके करते हैं, थोड़ा सा पेंशन देते हैं वो अलग बात है, क्योंकि उनको लोन चुकाना है। उनका हाथ ऐसे है, एक बार हमने पूछा कि हाथ ऐसे क्यों है, तो वो बता रहे थे कि एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, दूसरे हाथ से कहते हैं कि जितना दिया है उसकी थोड़ी कमीशन अंदर आने दो। तो एक बड़े ब्राह्मण थे बंगाल के, वो एक समय तिरुपति में गए भगवान के दर्शन करने, बहुत समय पहले की बात है, और उस समय फिर उनको बहुत अच्छा लगा और वहीं पर रह गए। बाकी जो वहां के श्री वैष्णव ब्राह्मण थे वो लोग इस ब्राह्मण को ज्यादा मान सम्मान नहीं देते थे, और सोचते थे कि ऐसे ही कोई ब्राह्मण है, इसको ज्यादा मान सम्मान नहीं देना चाहिए। उनका नाम भी था सेवादास, बड़ी सेवा करते थे भगवान, लेकिन कोई उनको आसपास नहीं रखते थे, तो अकेले ही रहा करते थे, क्योंकि श्री वैष्णवों की अर्च विग्रह पद्धति अलग होती है और ये कोई ज्यादा पद्धति जानते नहीं थे, लेकिन बड़ा प्रेम था भगवान से, तो ये अलग रहने लगे, अकेले रहने लगे। फिर उस समय में ये चेस खेला करते थे, इन्होंने एक पद्धति निकाली कि अकेले ही चेस खेलते थे। चेस जानते हैं आप लोग, शतरंज पहले के जमाने में लोग खेला करते थे। तो जब अकेले रहते थे, कोई इनके पास आता नहीं था, तो भगवान ने एक बार देखा, भगवान को बड़ी दया आई, भगवान ने सोचा मेरा इतना बड़ा भक्त है अकेला ही खेलता है, मैं भी जाकर थोड़ा इसके साथ चेस खेलता, शतरंज खेलता। तो एक दिन भगवान गए उसके दरवाजे पर, खटखटाया, दरवाजा खोला, देखा सामने भगवान खड़े, तुरंत नंदन प्रणाम किया, भाव विभोर हो गया, आवाज ही नहीं निकल रही मुंह से, भगवान सामने आ गए। आप सोचिए आपके साथ ऐसा हो तो क्या होगा। एक दिन घर पे घंटी वेटिंग टाउन, राजा के दरवाजा खोले, सामने भगवान खड़ा होगा, आप लोग क्या बोलेंगे, कौन सी नाटक कंपनी से आए हो, आप कोई दंडवत नहीं करेगा। क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है, कलयुग है, भगवान सामने देखकर भी कोई भगवान को नहीं पहचानता। उसने दंडवत प्रणाम किया, बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने भगवान से पूछा कि आप कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा रोज तुम अकेले शतरंज खेलते हो, आज मेरी इच्छा हुई मैं तुम्हारे साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ। तो फिर उसने कहा आपकी इच्छा है तो आइए। फिर दोनों शतरंज खेलने लगे, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। फिर ऐसे शतरंज खेलते खेलते काफी समय हो गया, फिर भगवान चले गए। अगले दिन फिर आए, फिर शतरंज खेला, ऐसे रोज आने लगे और शतरंज खेला करते। तो एक समय जब भगवान उनके साथ खेल रहे थे, अचानक दरवाजे पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने दरवाजे खटखटाया। तो ये जो सेवादास जी थे ये गए, तुरंत दरवाजे खोला, और खोला तो उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं शतरंज खेल रहा था, तो मैं अभी बिजी हूँ, आप जाइए। और फिर दरवाजे बंद करके जब वापस आए, तब तक भगवान चले गए थे, लेकिन भगवान का एक बहुत बहुमूल्य हार वो वहां छोड़ गए। तो ये सेवादास जी सोचने लगे कि क्या करूं, रात्रि का समय था, इंतजार करने लगे कि भगवान फिर आएंगे आएंगे, लेकिन भगवान आए नहीं। तो सुबह हो गई, तो सेवादास जी ने सोचा कि ये संपत्ति तो भगवान की है, मुझे भगवान को वापस करनी चाहिए। तो हार को ऐसे हाथ में उठाकर मंदिर की ओर चलने लगे। अब वहां पर जब श्री वैष्णव सारे जो ब्राह्मण थे वो सुबह आए और उन्होंने भगवान के दर्शन खोले और देखा कि हार नहीं है भगवान का, तो सारे जो मंदिर का वहां हंगामा हो गया, तो किसी ने भगवान का हार चुरा लिया, तो सब जगह सब लोग ढूंढने लगे कहां गया हार। अब ढूंढ रहे हैं, इतने में हमारे सेवादास जी हाथ में हार लेकर बड़े आराम से चलकर आ रहे हैं। तो वो वैष्णव तो वैसे ही इनको पसंद नहीं करते थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि इसके हाथ में हार है तो एकदम चिल्लाने लगे, यही चोर है, यही चोर है, इसने भगवान का हार चुराया है, हम पहले ही कहते थे ये ब्राह्मण नहीं है, भक्त नहीं है। तो फिर अचानक सब लोग उनको मारने ही वाले थे, एक व्यक्ति जरा थोड़े वहां के भक्त थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं रुको, इससे पूछते हैं कि क्या बात, क्या मामला। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपके पास ये हार कैसे आया, तो उन्होंने बताया कि भगवान रोज मेरे साथ शतरंज खेलने आते। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, सोचिए आप में से कोई भक्त कोई कहे रोज कि भगवान मेरे साथ रोज बैठकर चाय पीते, चाय तो दूध पीकर जाते हैं, भगवान दूध पीकर जाते हैं रोज मेरे साथ बैठते हैं, बाकी लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे कि थोड़ा सा ऊपर का जो डिपार्टमेंट है वो खाली हो गया है, कुछ रहा नहीं। वैसे इनको भी पूछने लगे, इनको सोचने लगे अच्छा आपके साथ शतरंज खेलते हैं भगवान, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं। तो राजा को बुलाया, कहा देखिए एक तो चोर है, चोरी किया, ऊपर से कहता भगवान इनके साथ शतरंज खेलते हैं। लेकिन राजा बड़ा धार्मिक था, राजा ने कहा कि हम आपको एक अवसर देंगे, अगर भगवान आपके साथ शतरंज खेलते हैं या आपकी भगवान के साथ इतनी मित्रता है तो भगवान आपको बचाएंगे। तो हम आपको एक जेल में डाल देते हैं और वहां पर उन्होंने बहुत सारे शुगर के गन्ने रख दिए, बहुत सारे बड़े बड़े गन्ने, और कहा कि ये अभी रात्रि का समय है और सुबह तक आपको ये सारे गन्ने खत्म कर देने चाहिए। अब आप अपने मित्र से मदद मांग लीजिए। और बहुत सारे गन्ने के अंदर भर गया था, कोई व्यक्ति नहीं खा सकता था। तो फिर उस समय जो ये सेवादास जी थे इनको कोई चिंता नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक, उनको जेल में डाल दिया गया कोठरी में। सेवादास जी बड़े आराम से सो गए, कोई चिंता नहीं, उन्हें ये नहीं था कि सुबह ये सारे यहीं पड़े रहेंगे, मैंने तो एक भी नहीं खाया है और सुबह यहाँ पड़े होंगे तो फिर तो ये लोग मुझे जीवन भर कारावास हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, बड़े आराम से सो गए। ये भक्तों का गुण होता है, लक्षण है, उनको कोई चिंता नहीं। अर्जुन भी सो रहे थे, भीष्म पितामह अगले दिन उनकी हत्या करने वाले, दुर्योधन को वचन दिया है कि कल युद्ध में मैं पांचों पांडवों की हत्या करूंगा, ये पांच तीर तुम्हारे पास रखूंगा। वैसे दुर्योधन ने मांगे, भीष्म ने नहीं रखे थे। जब भीष्म ने ऐसा बताया कि पांच तीर मेरे पास हैं, इन पांचों तीरों से मैं अर्जुन और बाकी पांडवों की हत्या करूंगा, तो दुर्योधन ने सोचा कहीं सुबह तक कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, मैं ही रख देता, इसे नहीं पता कभी गड़बड़ होने वाली। तो उस समय भी कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अरे उठो, क्या आराम से सो रहे हो। अर्जुन बड़े आराम से सो रहे थे, सारे जो उनका कैंप था उसमें टहलका मचा हुआ था, सबने सुन लिया था भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कल पांडवों का वध करेंगे, और यहाँ पर सारे लोग चिंतित हो रहे हैं क्या होगा क्या होगा, क्योंकि भीष्म कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी छोटे से सैनिक ने कह दिया कहीं पर कि मैं पांडवों की हत्या करूंगा, तो बॉलर भी नहीं करेगा, अच्छा ठीक है कह दिया तो कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन बोले कहा बेटा सामने में देखता हूँ कितनी हत्या करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा है जो इतने शक्तिशाली हैं जिनको कोई हरा नहीं सकता, तो सारे कैंप में हलबली मची है, किसी को नींद नहीं आ रही है, सब सोच रहे हैं क्या करें, और यहाँ पर अर्जुन बड़े आराम से सो रहे हैं। कृष्ण ने उठाया, देखो क्या सोचो क्या कर रहे हो, सो क्यों रहे हो, और क्या करो, रात्रि का समय है सोना चाहिए, रात्रि में सब सोते हैं, इतनी बड़ी विपदा है, कल भीष्म तुम्हारी हत्या करने वाले हैं, तुम्हें चिंता नहीं है। मैं कहा आप है ना चिंता करने के लिए, मैं क्यों चिंता करूं, सो गया बाप, क्या चिंता है, आप चिंता करो। इसलिए भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मैं तुम्हारी फिर चिंता कर लूंगा, जब मुझे समर्पण करोगे तो मैं चिंता करूंगा, अगर अपने आप पर आप आश्रित रहोगे, अपने आप को समर्पण करोगे तो फिर आप ही चिंता करो, मैं क्यों चिंता करूं। तो जो भक्त होते हैं वो कुछ चिंता नहीं करते, भगवान पर छोड़ देते हैं। इसी तरह सेवादास जी सो गए आराम से, कोई चिंता नहीं, भगवान यहाँ सोच रहे यार कैसा भक्त है, सो गए बड़े आराम से, कल राजेश को पकड़ लेगा और तो फिर कुछ करना चाहिए, भगवान ने सोचा नहीं, जैसे कृष्ण ने सोचा कि भाई अर्जुन कुछ नहीं कर रहा तो मुझे कुछ करना चाहिए, फिर उठाए जाओ दुर्योधन के पास उत्तीर मांग कर लाओ। तो भगवान भी यहाँ सोचने लगे कि सेवादास जी कुछ नहीं कर रहे, मुझे ही कुछ करना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक सफेद हाथी का रूप लिया, क्योंकि गन्ने कौन खाता है, हाथी, तो सफेद हाथी का रूप लिया और वो वहां पर कारागार में प्रकट हो गए और फिर वो खाने लगे गन्ने, और ऐसे खाते खाते सुबह हो। अब सुबह सेवादास जी आराम से उठे और देखा कि सामने सफेद हाथी है और सारे गन्ने गायब हैं, एक गन्ना लास्ट बचा था जिसे भगवान खा रहे थे, तो उन्होंने देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, उठते दंडवत प्रणाम किया हाथी। और फिर जब बाकी लोगों ने देखा तो वो लोग भी हैरान, तब तक हाथी गायब हो गए, और फिर उन्होंने दरवाजा खोला और उस समय सेवादास जी हाथी राम कहकर बड़े जोर जोर से चिल्लाकर भागे, सारे सड़कों पर भागते भागते भगवान के दर्शन कर रहे। तो तब से उनका नाम हाथी राम बाबा जी हो गया, वहां पर वहीं रहे जीवन के अंत तक, और उनको लोग हाथी राम बाबा जी कहते। हाथी राम क्यों चिल्ला रहे थे वो, कि हाथी के रूप में वही राम भगवान श्री राम आए, तो हाथी राम कहकर चिल्लाने लगे। और ये बड़े जो राजा थे वहां के, उन्होंने उनका सम्मान किया, आगे चलकर बड़ा उनको बना आश्रम बना कर दिया, ऐसे अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया। तो अगर भगवान पर विश्वास हो तब हम अपने से कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा में लगा। सेवादास जी ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, राजा ने कहा कि तुम्हें इतना विश्वास है तुम्हारे मित्र आएंगे तो फिर इसको खत्म करो, तो चिंता नहीं हो रही थी उन्हें कि कोशिश करूं मैं एक दो खा लू, तीन चार में खा लू या खिड़की से बाहर फेंक दू, कुछ करूं, कोई चिंता नहीं, सो गया आराम से, भगवान है चिंता। अब तो हमें हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है वो सो जाएंगे जाकर कि अभी भगवान चिंता करें जाकर मेरा एग्जाम लिखें, वहां हाथी बनकर आते हैं या स्टूडेंट बनकर जाएंगे जो पत्नी है घर में वो आराम से सो जाए, भगवान आकर मेरी रसोई बना देंगे, ज्यादा चिंता है पति को तो बाहर खा लेंगे, ऐसे नहीं होगा। वो इसलिए हुआ सेवादास जी का क्योंकि उनका इतना समर्पण था भगवान के प्रति, इतना विश्वास था। हमें इतना विश्वास नहीं है इसलिए नहीं होगा, अगर इतना विश्वास है जैसे दो तालियां बजाने तक अगर खाना आया प्रसाद तो ठीक है, नहीं तो दरकार ने जान दे दो, इतना विश्वास है तब भगवान मदद करते हैं, और अगर विश्वास नहीं है तो भगवान मदद नहीं करते। इसलिए इस कार्य क्षेत्र को अपने कानों को भगवान की लीलाओं के श्रवण में लगाना चाहिए, आंखों को भगवान के विग्रह को देखने में लगाना चाहिए, ये इस कार्य क्षेत्र की पूर्णता होगी, और तब हम असली में क्षेत्रज्ञ कहलाएंगे, क्षेत्र को जानने वाले, क्योंकि क्षेत्र को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि किस तरह से भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, उनका श्रवण करना चाहिए जिसके द्वारा हम लोगों की विशुद्धि हो और हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। तिरुपति का स्मरण आते बहुत सुंदर लीला और वहां पर हुई थी, दो मिनट है आपको सुना देते हैं। नारद मुनि की कथा, आप लोग जानते हैं कि हमारे जो नारद मुनि हैं वैसे तो ब्रह्मचारी हैं लेकिन गृहस्थों के घर में जाकर बड़ी गड़बड़ करते हैं, इधर का उधर कर देते हैं, उधर का इधर बता देते हैं, और फिर जब झगड़ा होता है भगवान में तो फिर नारद मुनि को बड़ा आनंद आता है। ऐसी एक लीला उन्होंने राधा रानी के साथ की थी, जाके बता दिया था कि देखो राधा रानी को कि ललिता के साथ भगवान बैठे हैं। तो तिरुपति में भी ऐसी ही एक गड़बड़ सॉरी ऐसी एक लीला नारद मुनि ने की थी। एक समय हम लोग जानते हैं तिरुपति की कथा, सब लोग लक्ष्मी देवी यहाँ पर नाराज होकर बैठी थी कोल्हापुर में, और वहां पर भगवान ने पद्मावती से विवाह कर दिया। आए तो थे भगवान विरह में कि हाय लक्ष्मी चली गई है तो उनको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आए वहां पर रहे, फिर कहा कि ठीक है महालक्ष्मी जी यहीं पर पूजा तपस्या करती रहे, उन्होंने अपना विवाह कर दिया पद्मावती से। तो अब यहां तक तो नहीं पता था लक्ष्मी देवी तो तपस्या कर रही है, भगवान को पाने के लिए बड़ी नाराज है, तो नारद मुनि ने सोचा थोड़ी गड़बड़ करनी चाहिए। तो नारद मुनि आए लक्ष्मी देवी के पास, दंडवत प्रणाम किया, लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही हैं। नारद मुनि ने कहा उनसे कि आप क्यों तपस्या कर रही हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा देखो मेरे जो पति हैं नारायण हैं कैसे हैं, उस ऋषि ने उनके छाती पर लात मारी और उसको कोई दंड नहीं मिला, और मुझे कह रहे हैं कि तुम शांति बनाए रखो शांति बनाए रखो, तो जब तक वो इस बात को गलत नहीं करेंगे उस ऋषि को दंड नहीं देंगे, मैं वापस नहीं जाऊंगा। नारद मुनि ने कहा आप कितनी अच्छी पत्नी हैं, आपसे जैसी पत्नी हो ही नहीं सकती, लेकिन आपके पति बस इतना कहकर रुक गए, इतने बहुत है लक्ष्मी देवी की वजह से। क्या हुआ पति? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं क्या हुआ लेकिन मुझे ऐसा सुनकर बड़ा दुख होता है कि आप तो यहाँ जंगल में तपस्या कर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, फल फूल खाकर तपस्या कर रही है, और वहां पर आपके पति। तो क्या हुआ पति का आगे तो कुछ बोलो। उनका वहां तो दूसरी शादी करके बड़े आराम से रह रहे हैं। ये सुनते ही लक्ष्मी देवी तो बड़े क्रोध में आ गई, दूसरी शादी कर ली है? हाँ दूसरी शादी कर ली है, बड़े आराम से रह रहे हैं वहां पर। आपको पता है नारद मुनि जब चढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा चढ़ा रहे हैं, तो बहुत कम चढ़ा रहे हैं। बड़ा लक्ष्मी देवी तो बड़ी नाराज हो गई, तुरंत मुझे अभी वहां लेकर चल रहे। नारद मुनि का वहां ये तो बड़ी सेवा है, चलिए अभी लेकर चलता हूँ। नारद मुनि लक्ष्मी देवी को लेकर तिरुपति आ जाते हैं, लक्ष्मी देवी बड़े क्रोध में है, और फिर नारद मुनि क्या करते हैं थोड़ा सा दूर रुक जाते हैं। लक्ष्मी देवी वो देखो वो घर है वहां पर अंदर नारायण है और पद्मावती, मैं यहीं पर ठीक हूँ, अब आप जाइए आगे, क्योंकि पता था कि साथ में चले गए नारायण कभी क्रोधित हो गए तो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो बाहर से दूर से देख रहे हैं लक्ष्मी देवी बड़े गुस्से में पांव पटकती हुई अंदर जाती है, और जैसे ही जाती है तो देखते हैं कि पद्मावती और श्रीनिवास भगवान वहां पर आराम से विराजमान है। बड़ा क्रोध आता है और पहले तो भगवान को बोलने लगती हैं कि कैसे तुम मेरे पति हो, कैसे तुम अपने सारी दुनिया सृष्टि को कंट्रोल करते हो, लेकिन एक ये भी नहीं पता कि पत्नी बेचारी वहां पर तपस्या कर रही है या बड़े आराम से भोग कर रहे हो। बड़ा जोर से चिल्लाने लगती है भगवान तो बड़े शांति में पता था, जैसे हो सकता है रोज का काम था भगवान सुन सकते थे, भगवान में कोई बात नहीं चलता रहता है। लेकिन जो पद्मावती थी फिर उसको बोलने लगी वो, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे पति के पास बैठे? अब सोच सकते क्या बोला होगा, हमें तो नहीं बोले। उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो बड़ी नाराज होंगे, अरे हो कौन तुम मेरे मेरे पति के सामने मुझे ही ऐसे कह रही हो, हमने विवाह किया है, इतना बड़ा विवाह हुआ था, करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, उसके लिए लोन भी लिया है कुबेर से, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? तो वो कहने लगी बहुत, लक्ष्मी जी महाराज बोले। तो उस समय बड़ा झगड़ा हुआ लक्ष्मी देवी और पद्मावती का, भगवान बड़े आराम से देख रहे हैं, ठीक है थोड़ा बहुत और हमें तो आनंद आ रहा है, और महाराज मुझे बाहर से देख रहे थे, उनको भी बड़ा आनंद आ रहा है, सोचिए भगवान को भी आनंद आ रहा है, बड़े आराम से देख रहे, दोनों झगड़ रही हैं लक्ष्मी देवी और पद्मावती, बड़े जोर से झगड़ा हो रहा है। अभी क्या क्या हुआ था वो हम आपको नहीं बताते हैं, लेकिन बड़े जोर से झगड़ा हो रहा था, और भगवान भी बड़े देख कर आ रहे, और आराम से बिस्तर में लेट रहे थे भगवान, ऐसे लेट कर आराम से देख रहे हैं, हाँ बढ़िया है बहुत अच्छा हो रहा है, तो मूवी का भी एंड नहीं हुआ है तब तक भगवान देख रहे हैं, और नारद मुनि बाहर से छुप कर देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो बहुत समय हो गया, भगवान ने कहा भी रोकना चाहिए, फिर भगवान ने लक्ष्मी देवी को बताया कि देखो नाराज मत हो, मैं आपको कथा बताता हूँ। भगवान बड़े चतुर हैं, इतने गुस्से में है, लेकिन उनको कथा बताकर घुमा लिया भगवान। तो भगवान ने बताया कि देखो पिछले जन्म में जब मैं राम के रूप में आया था, तब तुम लक्ष्मी के रूप में आए, तुम सीता के रूप में आए थे, और तुम्हें याद होगा कि हम लोगों को वन में जाना पड़ा था, और फिर जब एक सोने का मृग आया था और मैं उसके पीछे चला गया था, और लक्ष्मण वहां रह गया था, लेकिन फिर लक्ष्मण को भी तुमने भेज दिया, और फिर रावण आकर तुमको ले गया था, लेकिन जिस समय तुम जा रही थी उस समय दरअसल तुम नहीं गई थी, एक वेदवती जो अपने पिछले जन्म में वेदवती थी वो सीता के रूप में गई थी, और रावण उसको ले गया, और फिर जब बाद में अग्नि परीक्षा हुई वापस आने के समय, तो फिर एक नहीं दो सीता बाहर आई, और फिर उस समय तुमने मुझसे कहा था कि ये भी सीता का ही इसने रूप लिया है, इसने भी बड़ी तपस्या की है, तो आप इससे भी विवाह कर लीजिए, और मैंने तब कहा था कि इस जन्म में मैं केवल एक पत्नी धारण करूंगा, एक पत्नी व्रत धारण किया है मैंने, तो इसीलिए अगले जन्म में कलयुग में मैं इससे विवाह करूंगा। तो ये वही वेदवती है जो पद्मावती के रूप में आई है, और तुम्हारे ही कहने पर मैंने इससे विवाह किया, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने फिर ठीक है मेरे कहने से कहा ना, फिर कोई बात नहीं। तो फिर ऐसे भगवान पर चतुराई से उन्होंने सब ठंडा कर दिया था। तो इस तरह से बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान करते हैं, ताकि हम लोग अपने कानों का सही उपयोग कर सकें, भगवान की लीलाओं को सुने, शुद्ध हों। तो इसलिए जब हम ऐसे श्लोकों को पढ़ते हैं तो इसके मूल तक हमें जाना चाहिए, सुनना चाहिए कैसे प्रकट होते हैं, कैसे सारे अलग अलग तत्व आते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि अब इस क्षेत्र का उपयोग कैसे करना चाहिए, और वो है भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद अगर कोई प्रश्न होंगे तो